सुबह की धूप अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी। बंगले की गलियारों में एक अजीब सी खामोशी थी। पिछली रात का हंगामा, मेहमानों की फुसफुसाहट और शादी का अधूरा रहस्य, सब कुछ अभी भी दीवारों में गूंज रहा था। रैना अपने कमरे में खड़ी थी, आंखों के नीचे काली परछाइयां थीं, मानो उसने पूरी रात आंख न मूंदी हो। उसका दिल भले ही टूटा था, पर चेहरे पर ठान ली हुई दृढ़ता झलक रही थी। उसने धीरे धीरे अलमारी खोली और अपने सारे कपड़े, किताबें, कुछ पुरानी यादें सब एक बड़े सूटकेस में भरने लगी। हर बार जब कोई कपड़ा हाथ में आता, उसे लगता जैसे वो इस घर से जुड़ा एक टुकड़ा भी अपने साथ समेट रही है। व्हीलचेयर पर बैठे राजेश जी दरवाजे से उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में दर्द भी था और गर्व भी। बेटा, क्या सच में यही सही है? उन्होंने धीरे से पूछा। रैना ने पलट कर देखा, आंखों में नमी थी मगर होठों पर कठोर मुस्कान। हाँ पापा, जब घर ही अपना ना रहे तो यहाँ ठहरने का कोई मतलब नहीं। राजेश जी चुप रहे। उन्होंने अपनी व्हीलचेयर घुमाई और कहा, तो चलो मैं भी तेरे साथ हूँ। कुछ ही देर में दोनों हॉल में उतरे। रैना सूटकेस खींच रही थी और पिता व्हीलचेयर पर उसके साथ थे। हॉल के बीचों बीच कामिनी, मोनी और मानव खड़े थे। तीनों के चेहरे पर वही संतोष था जो किसी दुश्मन को गिरते देखाता है। मोनी आज लाल रंग की भारी साड़ी में थी। उसका चेहरा सच धज कर चमक रहा था, आंखों में विजय की चमक थी। उसने होठों पर एक ताने भरी मुस्कान रखी और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, आखिरकार सही जगह पर सही इंसान पहुंच ही गया। जो चीज़ हमारी किस्मत में होती है वही हमें मिलती है, और रैना तेरी तो यही औकात थी। मानव ने भी सीटी बजाते हुए मजाक उड़ाया, हाँ दीदी, ये बंगला, ये शादी, ये घर, ये सब तुम्हारे लिए कभी बना ही नहीं था। देखो अब कितनी आसानी से जा रही हो, जैसे कभी यहाँ थी ही नहीं। कामिनी हाथ बांधकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर जीत का गर्व था। उसने तीखी नज़र से रैना को देखा और कहा, तुम्हें समझना चाहिए था रैना कि इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, मगर अच्छा हुआ अब सारा बोझ अपने आप हट रहा है। रैना एक पल के लिए चुप रही, मगर उसके पिताजी ने जैसे ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं की। राजेश जी ने गहरी सांस लेते हुए अपनी पत्नी को घूरा, यही वजह थी कामिनी कि मैंने तुम्हें छोड़ा था। तुम मेरी बेटी को कभी स्वीकार ही नहीं पाई। तुमने माँ बनने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि तुमने हर दिन उसे तोड़ा। कामिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तेज आवाज में कहा, मत भूलो राजेश, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा था। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ रहना किसे गवारा होता। राजेश जी की आंखों में आग भड़क उठी। उन्होंने व्हीलचेयर के हैंडल कसकर पकड़े और कहा, गलतफहमी पाल कर रहो, मगर सच यही है कि तुम्हारे जैसे स्वार्थी और घटिया इंसान को मैंने ही छोड़ा था। तुम कभी पत्नी नहीं बन सकी ना माँ, तुम सिर्फ मेरे घर की दीवारों पर दाग थी और कुछ नहीं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कामिनी के चेहरे पर तिलमिलाहट थी, लेकिन राजेश जी ने कोई परवाह नहीं की। रैना ने धीरे से पिता के कंधे पर हाथ रखा, पापा रहने दीजिए, इनसे बहस करना बेकार है, आपकी तबीयत खराब है और मैं अब यहाँ रुकना नहीं चाहती। उसकी आवाज़ कांप रही थी पर उसमें दृढ़ता थी। वो आगे बढ़ने लगी। सूटकेस उसके हाथ में था और कदम भारी मगर तेज थे। इतने में पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, रुको रैना। विक्रम था, वो दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और मन जैसे उलझनों से भरा, लेकिन सब दिखावे का। उसने एक लंबी सांस खींची और तेज कदमों से रैना के पास आया।